أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض مومنین اور مومنات دربار معصومین میں سن 1442 ہجری کے ماہ محرم الحرام کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس عشرے یا یہ کہہ لیجئے کہ 10 سے کچھ کم مجلسوں کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کرنے کے لیے وہ عنوان ہے اختیارات و تصرفات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. ابتداءً اس مجلس عظام اور اس آپ کی خدمت میں جو ہم بیان پیش کر رہے ہیں اس بیان کی حد تک اس حدیث سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ جو حدیث مبارکہ رسالت مآب نے میدان غدیر میں رشاد فرمائی تھی اور وہ حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے میری قوم میری امت تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, دو بہت بھاری چیزیں, دو بہت مہم چیزیں, دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب و عترتی اہل بیتی اور میری عترت جو کہ اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے, لن تضلوا بعدی ابدا یاد رکھنا کبھی بھی, لن تضلوا یعنی نیور ایور کبھی بھی نہیں, کیا کبھی نہیں, گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں مجھ تک حوض کوثر پر آ ملیں گی. اذان محترم یہ جو ہم نے عنوان چنا ہے کہ اختیارات و تصرفات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام, ابتدا میں تھوڑا سا اس کو ہم ایک دو جملے سے کے اعتبار سے کہتے ہوئے پھر ہم براہ راست اس حدیث کی طرف آ جائیں گے. اس لیے اس عنوان کا چناؤ کیا گیا اور اس کو اختیار کیا گیا کہ مومنین تک, سننے والوں تک, مومنات تک یہ بات پہنچے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو جو اختیارات عطا کیے ہیں, وہ جو انہیں پاورز عطا کی ہیں, وہ جو ان کے پاس حق تصرف ہے, وہ کس حد تک ہے, وہ کیا ہے. یقیناً ایک طالب علمانہ گزارشات ہی رہیں گی, علماء کرام اسے مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, لیکن ایک کوشش ہے کہ لوگوں تک اس بات کا تھوڑا سا پیغام پہنچایا جائے اور اندازہ کروایا جائے کہ دراصل اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے کیا کیا اختیارات दिए हुए हैं, दे रखे हैं, और वो क्या करने के कैपेबल है परवरदिगार आलम के इज़्ज़त से। यकीनन ये जो मसला के अहले बैत है ये माइनस अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट तो रखता नहीं है, फिकह जाफरिया माइनस अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखता। हमारे यहां पर जिसके पास भी जो कोई भी इख्तियार अगर है तो वो इख्तियार रब्बे ज़ुल्जलाल की जानिब से दिया गया है। लिहाजा अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के भी इख्तियारात की जब तक जहां जहां तक बात की जाएगी वो सारी बातें इस पैराए में होंगी कि उन्हें परवरदिगार आलम ने जिंदे रखा, और यकीनन है कि उसके नुमाइंदे अल्लाह के नुमाइंदे मंसूस में अल्लाह है, परवरदिगार आलम की जानिब से इनके लिए नस वारिद हुई है, लिहाजा उनके इख्तियारात और तसर्रुफात की कुछ मिसालें आपकी खिदमत में भी पेश की जाएंगी और अकायदी एतबार से भी कुछ बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार की जाएंगी, यानी कि यहां पर बयान होंगी। खुद ज़ियारत जामिया, ज़ियारत जामिया कबीरा हजरत इमाम अली नकी अलैह अफजल तहियत व सना दसवें मौला दसवें सरकार ने जो तालीम फरमाई, एक सहाबी ने पूछा मौला ऐसी ज़ियारत तालीम फरमाएं कि जब मैं आप आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम की कबूर में से किसी भी इमाम की कब्र पर आऊं तो उस ज़ियारत को पढ़ूं कि जो जामे हो, कि जो मुकम्मल ज़ियारत हो और जो आपके मकाम की अक्कासी करती हो। ज़ियारत जामिया की तिलावत हर मोमिन मोमिना को इस एतबार से भी करनी चाहिए कि मफातिहुल जनान के अंदर वो जो सैयद रश्ती का वाकया, मैं वो वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं वो वाकया नहीं दोहराऊंगा। अगर मुमकिन हो आप अहबाब के लिए तो मफातिहुल जनान के अंदर जरूर सैयद रश्ती वाला वाकया कि जिसमें इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से उनकी जब मुलाकात हुई तो तीन बातों की वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई, सलातुल्लैल, ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया, और तीनों ही चीजों का जिक्र तीन बार तकरार के जरिए से, सलातुल्लैल, नाफिलतुल्लैल, नाफिलतुल्लैल, आशूरा, आशूरा, आशूरा और जामिया, जामिया, जामिया। ज़ियारत जामिया क्या खूबसूरत उसके अल्फाज हैं और क्या उसके आलियतुल मजामीन मानी है कि जिसका मुतालआ करने से यकीनन ईमान की ताजगी और दिल के नूर में इजाफा होता है। बिकुम युस लको इलर रिजवान, अगर कोई मकाम रिजवान तक पहुंचना चाहता है, अगर कोई अल्लाह की रिजाओं को हासिल करना चाहता है, बिकुम आपके जरिए युस लक वहां तक पहुंचेगा, आपके जरिए से पहुंचेगा रिजवान तक, अहले बैत आपके जरिए से पहुंचेगा। वो अलामन जहादा विलायतकुम गज़बुर रहमान, और जिसने आपके इख्तियार के साथ जंग की और जिसने आपके विलायत को कबूल न किया, रिटेलिएट किया, उसको रद्द कर दिया, उसका इनकार किया, गज़बुर रहमान परवरदिगार का गजब उसके शामिल हाल हो जाता है, खुदा उससे नाराज हो जाता है कि जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को न माने, उस पर ईमान न रखे, उसके साथ जुहूद करे, उसके साथ रिटेलिएट करे, उसकी मुखालिफत करे। अब देखिए, अब यकीनन अगर हम ज़ियारत जामिया की तरफ चलेंगे तो फिर बात उस तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये ज़ियारत जामिया के कुछ कुछ अल्फाज भी रोजाना इंशाल्लाह हमारी मजलिस के अंदर शामिल होते रहेंगे, इसलिए कि ये ज़ियारत डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टॉपिक के साथ। हम ज़ियारत जामिया की शरा के उनवान से मजालिस का उनवान नहीं रख रहे, ये मोमिनीन के जहन में रहे कि जो हमारी मजलिसों का उनवान है वो ज़ियारत जामिया की शरा नहीं, लेकिन जो उनवान है इख्तियारात तो तसर्रुफात अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम, इसका इस उनवान का रिलेशन ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्टली जाकर मिलता है ज़ियारत जामिया कबीरा के साथ। इसी वजह से जो बातें हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे उसके सपोर्ट के लिए कुछ अल्फाज हम ज़ियारत जामिया कबीरा से लेकर आपकी खिदमत में बयान किया करेंगे बतौफीक परवरदिगार व बताईद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो सारे मिलकर एक दुरूद भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हदीसे सकले रिसालत माम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकले, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी वजनदार चीजें, बड़ी मुहिम चीजें, बड़ी कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूं। किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत अहले बैत। मा इन तमस्सक तुम बिही नहीं कहा है, ये याद रहे, मा इन तमस्सक तुम बिही नहीं कहा है, बिहिमा कहा है, बिही एक की तरफ पलटेगी जमीर, बिहिमा उन दो को अगर थामे रहे, उनसे तुम मुतमस्सिक रहे, उनको पकड़े रखा मजबूती से, लन तज़िल्लु बादिया बदा, कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब इसमें उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाज से इस हदीस को फैलाया है और इसके जो मौजूआत हैं, इसके जो टॉपिक्स हैं, वो अलग अलग निकाले हैं उलमाए कराम ने। तो अब हम उसमें से कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। नंबर वन, पहली बात कि ये जो दो चीजें हैं, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, ये वो दो चीजें हैं कि जो दो चीजें तमाम उम्मत से अशरफ हैं, अकरम हैं, अफजल हैं। ये दो चीजें हैं, मतलब क्या हुआ कि इनकी जो फजीलत है, इनकी फजीलत तमाम उम्मत पर अफजल है, ये पूरी उम्मत से अफजल हस्तियां हैं अहले बैत अथार। कुरान करीम तो है ही है, क्योंकि कुरान को अहले बैत का अदील करार दिया है। लेकिन अच्छा, और फिर कुरान करीम का काम भी यही है कि कुरान करीम की आयतें आपको पहुंचाती हैं इमाम मासूम तक, और इमाम मासूम की तरफ चले जाएं तो वो जो बात करते हैं वो फिर आपको कुरान करीम से उसके दलाइल और उसके इशारात मिल जाते हैं। लेकिन ये जो हदीस सकलैन है, इसके अंदर क्या इरशाद हुआ है, इसमें ये इरशाद हो रहा है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ जा रहा हूं, तुमने इन दोनों को थामे रखना है, यानी कि तुमने इनके पीछे चलना है, ये तुम्हारे आगे आगे रहे, ये बात याद रखना कि कहीं तुम इनके आगे तो बहुत दूर की बात है, बराबर भी आगे ना खड़े रह जाना, तुम इनके पीछे रहना, यानी तुमने इन्हें थामे रखा, यानी तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूं, ये तुम्हें हुक्म देके जा रहा हूं मैं हज्जतुल वदा के मौके पर रिसालत माम, कि इन दोनों को तुमने थामे रखना है, मजबूती से पकड़ के रखना है, यानी कि तुम्हें इन्हें अपना रहनुमा बनाना है। अगर तुमने यह कर लिया तो फिर तुम कभी गुमराह नहीं होगे। क्या? अगर तुम इनके पीछे चले। अब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुरान एक किताब है, लेकिन अहले बैत हैं कि जो बोलने वाली हस्तियां हैं, शख्सियात हैं, ये शख्सियात वो हैं कि जो पूरी उम्मत में, पूरी इंसानियत पर बल्कि अफजलियत रखते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद। ठीक, अफजलियत है इनकी, ये एक बात तो इससे ये आ गई। दूसरी बात के रिसालत माब ने ये हुक्म दिया है कि हम अहले बैत की तरफ रुजू करें, यानी कि जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई मरहला हो, जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई सवाल हो, तो रुजू कहां करना है, वो पॉइंट बता कर गए रिसालत माँ। अच्छा, कुरान की तरफ अगर रुजू करें फिर क्या होगा? फिर भी एक एम्बिग्विटी रहेगी, एक अनक्लियरनेस रहेगी, बात क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए कि एक ही आयत के 70 बुतून है, एक ही आयत के 70 मानी है, एक ही आयत के मुख्तलिफ तफासीर हैं, लिहाजा ये आयत किस मानों में है ये भी कौन बताएगा? अहले बैत अथार। लिहाजा इन दो चीजों में से, ये जो सकलैन है, सकलैन इन दो चीजों में से भी जो अफजल है वो क्या है? वो अहले बैत है। चलिए उस तरफ हम अभी हम आएंगे। लेकिन रिसालत माब ने क्या इरशाद फरमाया? नंबर वन, नंबर एक, कि तुमने इनके पीछे पीछे चलना, इन दो को तुम्हारी हिदायत के लिए छोड़े जा रहा हूं, इन्हें तुमने थाम के रखना है, ये तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अब अगर बैत करना है तो चलकर तुम्हें अली के पास आना पड़ेगा, अली नहीं कहेंगे कि मेरी बैत कर लो। बिल्कुल उसी तरह से वो हदीस के जिस हदीस का ये मफहूम बनता है कि जो हदीस मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में जब आप दाखिल होते हैं तो वो वाला दरवाजा की जो दरवाजा खवातीन के एंट्रेंस के लिए है, दरमियान में पार्टीशन है, एक दरवाजा दाएं जानिब एक बाएं जानिब, बाएं जाने वाला जो दरवाजा उस पर ये हदीस लिखी हुई, मसलो अलीन फीकुम का मसलिल काबतिल मस्तूरा, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मिसाल तुम लोगों में ऐसी ही है, का मसलिल काबतिल मस्तूरा, कि जैसे काबा मस्तूरा हो, छुपा हुआ काबा, ढका हुआ काबा, सतर पोशीदा काबा, नजरों इलैहा इबादतुन वल हज इलैहा फरीदा, के काबे की तरफ निगाह करना इबादत, काबे की तरफ हज करने के लिए जाना फरीजा, या काबे की तरफ बढ़ने की कोशिश करना फरीजा। तो काबे की तरफ बढ़ने की कोशिश करना फरीजा है, काबा का तवाफ करना हो, हज करना हो, उमरा करना हो, एहराम पहनकर नियत करके तलबिया पढ़कर तुम्हें चलकर काबा जाना पड़ेगा, काबा नहीं आएगा चलकर ये कहने के लिए कि मेरा तवाफ कर लो। अब ये सवाल ना करना कि 25 साल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई तहरीक क्यों ना चलाई अपने हक को वापस लेने की, इसलिए कि ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक जरूर था कि उनको खलीफा माना जाए, लेकिन फर्ज किसका था, पूरी उम्मत का, कि अली अपने अबी तालिब को अपना इमाम माने और जाकर उनकी बैत करें और उनको फॉलो करें। खैर, तो हम अर्ज ये कर रहे थे कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम हो गए अहले बैत के अथार अलैहिस्सलाम, इनके पीछे चलना, हमें इनके पास जाना है, ये हमारे पास, लेकिन फिर भी इतने करीम है कि अगर कोई इनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो ये उसकी तरफ 10 कदम बढ़ा कर आ जाते, मगर इब्तिदा हमारी तरफ से हो, कोशिश जोहद हमारी तरफ से हो, मेहनत हमारी तरफ से हो, हमने इनकी तरफ बढ़ना है। लिहाजा पहली बात ये कि अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम और कुरान की तरफ ये हमने जाना है। दूसरी बात ये कि हर चीज में इनकी तरफ रुजू करें और कुरान की तरफ रुजू करने में फिर एक अनक्लियरनेस रहेगी, नहीं है ऐसे सारे अफराद कि जो कुरान करीम की किसी आयत से क्या मतलब निकालते हैं और वो मतलब निकाल कर गुमराही करते हैं, और सारी की सारी दुनिया अगर सवाल करती है कि ये तो आयत कुरान में लिखी है, हम कहते हैं भाई इस आयत का ये मतलब और ये मफहूम और ये तफसीर नहीं है, इस आयत के मानी अहले बैत अथार से जाकर पूछो तो तुम्हें एग्जैक्ट मतलब पता चलेगा कि ये आयत कुरानी क्या कहना चाह रही है। लिहाजा सिर्फ अगर कुरान करीम को रखा हाथ में तो इसकी मिसालें इंशाल्लाह आगे आने वाली मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी कि किस तरह से अगर कोई शख्स फकत कुरान को थामता है और ये कहता है कि मुझे अहले बैत की जरूरत नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं है, तो कुरान कैसे उसे गुमराह कर सकता है, वो आगे बात इंशाल्लाह हम आपको मिसाल के तौर से समझाएंगे मिसाल के जरिए से। तो दूसरी बात यह हो गई कि हर चीज में इनकी तरफ रुजू किया जाए, ठीक। तीसरी बात कि दरअसल हम इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज नहीं है। तीसरी बात जो हदीस सकलैन से उलमाए कराम ने निकाली और उसे बयान किया है कि अहले बैत अथार और कुरान करीम रिसालत मां भी जो दो चीजें छोड़े जा रहे हैं, जानते हैं कि हम इनके मोहताज हैं, हम कुरान के भी मोहताज, हम अहले बैत अथार के भी मोहताज, लिहाजा हमने अपने आप को और अपनी एहतियाजात को पूरा करने के लिए इनकी तरफ जाना, हम इनके मोहताज हैं कुरान के भी एतरत के भी। मैं बात को बहुत तेजी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। खलील इब्ने अहमद फराहिदी कह लीजिए, खलील इब्ने अहमद नहवी कह लीजिए, उसने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की इमामत पर जो दलील के तौर पर एक जुमला कहा है, बहुत खूबसूरत जुमला, और वो जुमला इस तरह से कि इस्तिग्नाउ अनिल कुल व एहतियाजुल कुल इलैह दलील अन्नहु دلیل علی انه امام الکل، کہ خلیل ابن احمد فراہیدی، خلیل ابن احمد نحوی یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام جو کل کے امام ہیں، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کل کے کل جس جس کے رسالت ماب نبی ہے اس کے علی امام ہیں، تو ہر ایک کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں، کیا دلیل؟ تو ایک انہوں نے جملہ ترتیب دیا خلیل ابن احمد نیوی نے، کہا کہ استغناؤہ عن الکل، ذات مولا کائنات علیہ السلام کا استغنا، مستغنی، بے نیاز ہونا، عن الکل، سب سے علی بے نیاز، واحتیاج الکل الیہ، اس بات کے ساتھ، اس حال میں کہ ہر کوئی کل کا کل محتاج ہے، علی کا محتاج ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، کیا؟ علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا محتاج ہونا، اس بات کی دلیل ہے انہو امام الکل، کہ وہ امام کل ہے، جبھی تو وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے علی کے محتاج ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نقطہ یہاں پر یہ آ گیا. لہذا یہ بات یاد رہے کہ اگر سعادت، ہدایت ہے تو وہ راہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ہے، اسی وجہ سے کہا کہ میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب اگر قرآن کریم کی بھی کسی آیت کا کوئی مفہوم لینا چاہو، اس کا کوئی مطلب نکالنا چاہو ہدایت کے لیے یا کسی اور عنوان سے، تو یاد رکھنا اہل بیت اطہار کو مائنس کر کے وہ کام نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہی اہل بیت، یہی رسالت ماں فرمانا چاہتے ہیں کہ اب یاد رکھنا قیامت تک جب بھی قرآن کریم سے کوئی ہدایت لینا چاہو اور وہ اہل بیت اطہار کے بغیر ہو، ان کو بائی پاس کر کے اگر ہوگی، تو ہمیشہ تمہارے گمراہ ہونے کا خطرہ رہے گا. اور پھر ایک بات اور جو اس سے نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ جو منصب امامت الہیہ ہے، منصب خلافت الہیہ ہے، یہ منصب بھی منحصر ہے، محدود آ کر ہو گیا ہے صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے لیے، منحصر ہے کن میں؟ اہل بیت اطہار میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور ہوا منصب امامت یا خلافت الہیہ پر آ گیا یا ہوا، تو گویا اہل بیت اطہار کا قرآن سے جدا ہونا لازم آئے گا، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس شخص کا کہ جو منصب امامت الہیہ پر فائز ہے وہ قرآن سے جدا ہے، یا یہ کہنا پڑے گا کہ وہ قرآن سے جدا ہے کیونکہ ان کے تو متمسک، ان کے تو قرآن کے ساتھ ذکر نہیں کیا، یا یہ ہوگا کہ وہ قرآن سے جدا ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ قرآن سے متصل ہیں اور یہ امامت الہیہ پر فائز نہیں ہے اہل بیت اطہار، نعوذ باللہ من ذلک، تو پھر ان کا قرآن کریم سے جدا ہونا لازم آئے گا، اور اگر قرآن کریم سے جدا ہونا لازم آئے گا تو پورے اس نظام میں خلل ہو جائے گا. لہذا یہ بات یاد رہے کہ اگر اب رسالت ماں کے یہ کہنے کے بعد کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کی عدیل عترت اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ بات یاد رکھنا کہ امامت الہیہ کا منصب انہی اہل بیت میں منحصر ہے اور کوئی امام نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو ان کے علاوہ امام بنایا گیا تو وہ امام الباطل ہوگا، یا باطل کا امام ہوگا، یا جس کو کہتے ہیں کہ خیر چلیں بس اتنا. اچھا پھر خود ان کے لیے آیت تطہیر کا نازل ہونا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرد مولا کائنات علیہ السلام کے لیے آیت ولایت کا نازل ہونا، ان کا رکوع کی حالت میں زکات کا دینا، یہ ساری وہ نصوص ہیں کہ جن کی پھر تفصیلات کسی اور وقت صحیح. البتہ میں ابھی خدمت میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے امام معصوم، امام مبین کون ہے؟ عترت اہل بیت کو قرار دیا ہے. تو دو روایتیں آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے، ایک اصول کافی سے اور ایک تفسیر عیاشی سے عرض کر دیں، और उनमें की पहली रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक नसरानी ईसाई क्रिश्चियन शख्स आया, आलिम, और आने के बाद उसने सवाल किया कि बहुत सारे सवालत लेकर आए थे। एक बहुत तूलानी रिवायत है जिसको अभी हम यहां पर जिक्र नहीं कर रहे, उसका एक पार्ट, उसका एक पोर्शन जिक्र कर रहे। और वो नसरानी शख्स छठे इमाम अलैहिस्सलाम के पास आकर ये सवाल करता है कि जो बहुत सारे सवालों में से एक सवाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की जो ये आयत है हामीम वल किताबिल मुबीन, कि हामीम, अब हामीम तो हुरूफ मुकत्तात हो गए, ला यालमु तफसीरुहा इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, वो कि जो इल्म में रासिख हैं, वल किताबिल मुबीन, किताब मुबीन से मुराद क्या है? छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किताब मुबीन से मुराद है इमाम मुबीन। अरे इमाम मुबीन कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी आल से आने वाले और आइम्मा, और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आल से नौ इमाम। एक और हदीस इसी एतबार से मिलती है और वो सवाल भी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से किया गया एक उस आयत के टुकड़े के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हुवा वयालमु मा फिल बर वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है, ला रतबिन वला याबिसिन, कोई मरतूब चीज, कोई याबिस चीज ऐसी नहीं है, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर यह कि जो किताब मुबीन में है। जब हुसैन इब्ने खालिद नाम का गालिबन ये रावी है कि जो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है और इमाम से सवाल दरियाफ्त करता है कि मौला इस आयत में जो किताब मुबीन है इल्ला फी किताब मुबीन, तो इसमें किताब मुबीन कौन सी किताब है, वो इस किताब मुबीन की तफसीर क्या है, इसका मिसदाक क्या है, इसकी फर्दें कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किताब मुबीन से मुराद हमारे जद हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, यानी कि फिर वही वाली बात आ गई कि अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम। और फिर सूरह यासीन की एक आयत कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज को हमने एहसा कर दिया, हर चीज को हमने रख दिया फी इमाम मुबीन, इमाम मुबीन में। इमाम मुबीन कौन है? इमाम मुबीन वो है कि जिनके पास हर सवाल का जवाब है, जबी तो कहा जाएगा कि हमने हर चीज का बयान रख दिया इमाम मुबीन में। हामीन वल किताबिल मुबीन, इमाम मुबीन किताब मुबीन से मुराद है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, यहां पर भी किताब मुबीन से मुराद कौन है? इमाम मुबीन। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और सूरह यासीन के अंदर इरशाद हो रहा है कि हमने हर चीज को रख दिया इमाम मुबीन में। तो इमाम मुबीन वो होगा कि जिसके पास हर चीज का बयान होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं पूछकर बताता हूं या मैं कल जवाब देता हूं या मैं देख कर बताता हूं किताबों से, और आजकल के जमाने मैं सर्च करके बताता हूं। लिहाजा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज का बयान एहसा कर दिया, मुहसा कर दिया, रख दिया, पोशीदा कर दिया इमाम मुबीन में। अब अगर कोई तुम्हें नजर आए मिंबर पर खड़ा ये कहता हुआ सलूनी कबला अंतफिदूनी, और उस दावे का जो हक है उसे भी अदा कर पाए, उनके तकाजों को पूरा भी कर पाए, तो समझ जाना कि यही वो है कि जिसे इमाम मुबीन कहा गया है। यही तो वजह है कि जब जनाब जिब्रील आए हैं और आने के बाद कहा है, अब एक शख्स है मौला बसरे के अंदर मौजूद है और मौला ने इरशाद फरमाया सलूनी कबला अंतफिदूनी, तो एक शख्स खड़ा हो गया और कहा आईना जिब्राइल, इस वक्त जिब्राइल कहां है? और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सामने देखा, और उसके बाद कहा कि अंत जिब्राइल, तू ही जिब्राइल है। कहा कि या अबुल हसन, आपको कैसे पता चला कि मैं जिब्राइल हूं? कहा जब मैंने दाएं जानिब देखा तो मैंने मशरिकी हदों तक निगाह दौड़ा दी, तू न मिला। मैंने जब बाएं जानिब देखा तो मगरिब की हदों ता हद मगरिब मेरी निगाह पहुंच गई, मैंने सब देख लिया कि मगरिब की आखिरी हद तक क्या है। जब मैंने नीचे देखा तो जमीन के जितने सातों तबका थे उसके नीचे तहत सरा तक मैंने देख लिया, और जब मैंने ऊपर देखा तो फोकस समा आसमान के जितने तबका थे उनके ऊपर तक मेरी निगाह चली गई, वहां कहीं तू नजर ना आया। और जब मैंने देखा तो यही तू है कि जिब्राइल है। और जब ये कहा है मौला ने जवाब दिया है, जिब्राइल मुस्कुराए, मस्जिद के अंदर की बात थी, और जनाबे जिब्राइल परवाज करते हुए मस्जिद की छत को शिगाफ्ता करते हुए उड़कर आसमान की तरफ चले गए, दरवाजे से बाहर चले जाते, ये छत को शिगाफ्ता करके ऊपर परवाज करके चले जाने की क्या हिकमत है। अजब नहीं कि ये कहा जाए कि अगर दरवाजे से चले जाते तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फजीलत को कबूल न करने वालों को मौका मिल जाता कि अली इब्ने अबी तालिब ने अपने ही किसी जानने वाले को बसरा में कांटेक्ट करके बुला लिया होगा और कहा होगा कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो आके सवाल पूछ रहे ना, मैं कहूंगा तुम ही जिब्राइल हो, लोग कहेंगे कि वाह क्या फजीलत है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वा तू बोले। ये उसके लिए होता है कि जिसकी अपनी कोई फजीलत ना हो, और जिसकी फजीलत ये हो कि आलमे अरवाह के अंदर आलम बाला के अंदर मलाइका हर शबे जुमा जिसके चेहरे की ज़ियारत के लिए जमा हुआ करते हो उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। खैर ये तो वो वाली बात है कि जो जैसा होगा वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए वैसी बात करेगा, लेकिन मस्जिद की दीवार शिगाफ्ता करके बता दिया कि अली की इस फजीलत में शक न करना सलूनी, और वहां पर खुदा ने अपने घर की दीवार शिगाफ्ता करके मादर अली इब्ने अबी तालिब को इस्तकबाल करके अली की विलादत काबे में करके बता दिया कि देखो काबे की दीवार जब तक शिगाफ्ता नजर आती रहे अली इब्ने अबी तालिब की इस फजीलत में शक न करना कि अली काबे में पैदा हुई। ये और बात है कि दरअसल फजीलत अली की थी कि काबे में पैदा हुए, या काबे की थी कि अली काबे में आए, ये एक और उनवान है। मगर अजीजों ये बात कि कुल्ला शयइन अहसनाहू फी इमाम मुबीन, हमने इमाम मुबीन में हर चीज को रख दिया, और फिर यही शान होती है इमाम मुबीन की कि मलाइका को भी तस्बीह करना यही सिखाए मलाइका को कि तस्बीह कैसे की जाती है, अल्लाह की हम कैसे की जाती है। और जनाब जिब्रील के बारे में यही तो है कि जब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मौला कायनात तशरीफ फरमाए, जनाब जिब्रील की आमद हुई, आए जनाब जिब्रील, बल्कि नहीं, रिसालत माप तशरीफ फरमाए, जनाब जिब्रील तशरीफ फरमाए, मौला कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए उस जगह। और जब मौला अली आए तो आने के बाद हजरत आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखकर जनाब जिब्रील अपनी जगह से बुलंद हो गए, खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए तो रिसालत माब ने फरमाया अतकुमु लिहाज़ल फता, कि ए जिब्राइल क्या तुम इस जवान के लिए खड़े हो रहे हो। तो जनाब जिब्रील ने क्या इरशाद फरमाया जानते हैं, इन्ना लहू अलैया हक्कत तालीम, कि या रसूल अल्लाह बेशक मैं इन्हीं के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए कि इन्ना लहू अलैया हक्कत तालीम, के बतहकीक मुझ पर इनकी जानिब से एक हक तालीम है, इनका एक हक है मेरी गर्दन पर, जो इन्होंने मुझे तालीम देकर करार फरमाया है। ये अली का एक हक है मेरी गर्दन पर, इन्होंने मुझे तालीम दी है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या तालीम दी है। कहा कि जब खुदा ने मुझे खल्क किया और जब मैं खल्क हो चुका तो हातिफ गैबी की सदा आई, मस्मुका व मस्मी, मन अंता व मन अना, जैसे ही आवाज आई तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, तो फौरन से मैं मुतहय्यर हो गया, फतहय्यरतुल जवाब, बस मैं जवाब देते हुए हैरान हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि जवाब क्या दूं, मुझे जवाब बनना पड़ा, मुझे पता ही नहीं था जवाब क्या दूं। जनाब जिब्रील कह रहे फतहय्यरतुल जवाब, फसमितु, फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक नूर देखा और उस नूर से एक आवाज आती हुई सुनाई दी, और उस नूर का यही कहना था कि घबराते क्यों, कह दो, जवाब दो कि अंत रब्बुल जलील व अना अब्दुकल जलील व इस्मुकल जलील व अना जिब्राइल, कि ए खुदा तू बड़ा साहिब जलालो कमालो जमाल वाला है, मैं तेरा अब्द जलील हूं और तेरा नाम जलील है, मेरा नाम जिब्राइल है। मैंने ये जवाब उस नूर से सीख के दिया, ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने, यही इन्हीं का नूर था कि जिन्होंने मुझे तालीम फरमाई, जिसकी वजह से मैं इनका एहतराम करता हूं। अब रिसालत माब ने एक और सवाल पूछा, रिसालत माब ने पूछा कि ये बताओ जिब्रील तुम्हारी खिलकत कब हुई, कितने साल पहले तुम्हारी खिलकत हुई। कही या रसूल अल्लाह मेरी खिलकत जब हुई तो एक नूर तुलू होता था और उस नूर को मैं देखता था, लेकिन वो नूर जो है उसकी खासियत ये थी कि वो नूर 30,000 साल में एक मर्तबा तुलू होता था उफुक पर, और उस नूर को कि जो 30,000 साल में एक बार तुलू होता था, मैंने उस नूर को 30,000 मर्तबा देखा है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 उसको देखा है। कहा अच्छा जिब्राइल अगर वो नूर अगर तुम्हें दिखा दिया जाए इस वक्त तो क्या तुम पहचान लोगे। कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूं उस नूर को कि जिसे मैंने 30,000 मर्तबा देखा। तो ये कहकर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को अपने से करीब किया रसूल ने और कहा या अबल हसन जरा अपने अमामे को बुलंद करें। और ये कहकर जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का अमामा बुलंद हुआ है तो पेशानी मौला अमीर अलैहिस्सलाम पर वही नूर था जिब्रील ने जैसे देखा, खुदा की कसम यही वो नूर है कि जिस नूर को मैंने 30,000 मर्तबा देखा है उफुक आलम पर नमूदार होते हुए। अब जरा सोच लीजिए कि ये कौन सी हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों के हवाले कर रिसालत माब अपनी उम्मत को गए, फसअल बिही खबीरा भी अल्लाह जो कुरान करीम में कह रहा है इन्हीं हस्तियों के दोष पर कह रहा है, इन्हीं हस्तियों पर तकिया करते हुए कह रहा है कि भाई फसअल बिही खबीरा उनसे पूछो जिनको खबर है, तो खबर के नहीं होगी कि जिनके सामने कायनात खल्क हुई, जिनकी मोहब्बत में कायनात खल्क हुई। लिहाजा ये वो हस्तियां हैं, अहले बैत अथार की हस्तियां वो हस्तियां हैं कि जिनको परवरदिगार आलम की जानिब से वो इख्तियारात और कमालात अता हुए हैं, वो विलायत जिसे हम अगर अरबी जबान के आप अंदर कहेंगे तो इख्तियार, इख्तियार विलायत, तसरुफ विलायत, पावर्स विलायत। एक मतलब विलायत का मोहब्बत है, एक मतलब विलायत का है वली होना किसी शय पर, किसी शय का इख्तियार अपने हाथों में रखना, किसी शय में तसर्रुफ का हक रखना। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम यानी रसूल अकरम अगर मौलाए कायनात को कुल का अमीर बनाकर इस दुनिया से रुख्सत हो रहे हैं तो गोया उन्हें हमारा मौला बना रहे हैं, यानी उन्हें हम पर हक तसर्रुफ दे रहे हैं। जिस तरह से मां बाप का हुक्म मानना वाजिब, उससे कई ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत अथार का यानी इमाम मासूम का हक और इमाम मासूम का हुक्म माना जाए। इंशाल्लाह फिर आने वाली मजलिसों में मजीद और उन माजिज का जिक्र करेंगे आपकी खिदमत में कि किस तरह से अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ये इख्तियार रखते हैं कि इंसानों में से किसी की भी शक्ल इख्तियार कर ले। ये इख्तियार अहले बैत अथार को किस तरह से, ये इख्तियार अहले बैत अथार के पास है कि जहां से जमीन के जिस हिस्से से चाहें परवरदिगार आलम की वो खजाने के जो जमीन के अंदर हैं उन्हें आश्कारा कर दे, उन्हें जाहिर कर दे, उन्हें बाहर निकाल दे। ये इख्तियार अहले बैत अथार को है खुदा की जानिब से कि जो मुर्दा हो उसे जिंदा कर दे, और बहुत सारे इख्तियारात। और बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हर वो इख्तियार के जो अलग अलग नबियों के पास एक एक करके था, वो सारे के सारे इख्तियार जमा करके परवरदिगार आलम ने अहले बैत अथार की हस्तियों के अंदर रख दिए। यानी कि क्या हजरत मूसा का मौजिजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा, हर नबी का मौजिजा, अलग अलग नबी के पास अलग अलग मौजिजा, वो सारे इकट्ठा करके एक अली की मुट्ठी में जमा कर दिए परवरदिगार ने। وہ سارے کے سارے معجزات ایک اکٹھے کر کے جمع کر دیے ہیں رسالت ماں کی مٹھی میں, وہ سارے کے سارے معجزات ایک اکٹھا کر کے جمع کر دیے ہیں 12 اماموں میں سے ہر ایک امام کی مٹھی میں الگ الگ. لہذا یہ جو 12 امام ہیں یعنی مولا کائنات علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے جناب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک کہ جتنے امام ہیں ان میں سے ہر ایک امام کے پاس وہ سارے کے سارے معجزات موجود ہیں ایک ہی وقت کے اندر. یہی وجہ ہے کہ یہ وارث انبیاء قرار پاتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت اس طرح سے منتقل ہو رہی ہے ان کی طرف. لہذا ان کے تصرفات اور ان کے اختیارات بھی بیان کیے جائیں تاکہ جو ان کی فضیلت ہے, جو ان کا مقام ہے, وہ ہم سمجھ سکیں اور اہل بیت اطہار کو ہم اپنے جیسا عام بشر نہ سمجھیں. ہم ہیں عام بشر مگر ہم پر وحی نہیں ہوتی, ان پر وحی کا سلسلہ رہتا ہے. ہم عام بشر ہیں مگر ہمارے پاس کوئی منصب نہیں. اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ وہ خاص منصب الہیہ, منصب امامت الہیہ رکھتے. ہم عام بشر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہوا پر مسخر ہو گئے یا ہم زمینوں پر یا انسانوں پر مسخر نہیں. اہل بیت اطہار کے پاس وہ اختیارات اور وہ تصرفات ہیں, اور وہ تصرفات صرف اور صرف زندگی کی حد تک نہیں ہیں, سکرات الموت کے وقت پر بھی ہیں, موت کے بعد بھی, قبر کی, برزخ کی منزل اور آگے چلے جائیے جتنا جاتے چلے جائیے. تو ان کے تصرفات موجود ہیں. پھر انشاءاللہ ایک آدھ دن اس طرح سے بیان ہوگا کہ وہ جو حدیث ہے کہ کس طرح سے امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مقتل سے نگاہ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر, رونے والوں پر, یہ کس طرح سے کہ امام معصوم علیہ السلام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر بیٹھ کر سب کو دیکھ سکیں, یہ کس طرح سے ممکن ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اور اس دعا کے ساتھ ہم مصائب کے دو جملے پڑھیں گے کہ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر مودت اہل بیت کا نور اور زیادہ افشاں فرمائے, اور زیادہ طاقت اور توانائی کے ساتھ پروردگار اسے روشن فرمائے. بس عزیزان محترم, جب مودت ہوتی ہے اہل بیت کی, جب محبت ہوتی ہے, تبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا غم انسان سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. سچی محبت کرنے والا کسی کی خوشی میں ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے, لیکن غمگین کسی کے لیے وہی ہوگا کہ جو اس سے سچ میں محبت کرتا ہوگا. اب ہم کن ہستیوں کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں, کن ہستیوں کا غم منانے کے لیے, کہ جن ہستیوں پر ملائکہ نے گریہ کیا, جن ہستیوں پر جنات روئے, جن پر انسان روئے, جن پر فرشتے روئے, جن پر آسمان نے گریہ کیا, جن پر زمین نے گریہ کیا. آسمان نے کیسے گریہ کیا کہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی دنوں تک آسمان خون روتا رہا. بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ ہم جب نکلتے تھے گھر سے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو چیزیں راستے میں رکھی ہوتی تھی وہ رنگ, ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا. زمین پر کربلا معلہ سے لے کر بیت المقدس کے درمیان تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے لہو برآمد ہوتا تھا, خون برآمد ہوتا تھا, اور سورج لال رنگ سے روشنی دیتا تھا, آسمان اور بادل سرخ ہو چکے تھے. مگر عزیزوں, کوئی دل زہرا سے پوچھے سلام اللہ علیہ, کوئی دل امام زمان علیہ السلام سے پوچھے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے, بولا یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں کہ جو اپنے اللہ کی مخلوق ہونے کا حق ایسے ادا کر رہی ہیں کہ اپنے امام پر گریہ کر رہی ہیں. زمین اپنے انداز سے رو رہی ہے, آسمان اپنے انداز سے رو رہا ہے, حیوان اپنے انداز سے رو رہے ہیں, مگر اے امام زمانہ آپ کے دادا, آپ کے جد مظلوم غریب حسین شہید, آپ کا دل کیسا ہے؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام آنسوؤں سے نہیں خون سے روتے. ہم تو آنسوؤں سے بھی نہیں کبھی رو پاتے, کبھی نہیں رو پاتے. زمانے کا امام خون سے روتا ہے میرا مولا. مگر ہاں عزیزو, وہ دن کہ جب मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलातो वस्सलाम अपने प्यारों को दफन करने के लिए, अपने बाबा के जानिसार सहाबियों को दफन करने के लिए, जवानान बनी हाशिम के जिस्मों को दफन करने के लिए बाएजाज इमामत कूफा से करबला तशरीफ लेकर आए हैं ना, तो एक मर्तबा आने वालों ने देखा कि कोई दूर से आ रहा है इस तरह से कि हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं और गले में खारदार तौक है। मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम आते हैं, बनू असद के कबीले वालों के लिए मुशख्खस करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा जनाजा किस शहीद का है। मौला सैयद सज्जाद आते हैं और कहते हैं, देखो ये दो नन्हे लाशें जनाबे जैनब कुबरा के दोनों लाल दोनों बेटों के हैं और मोहम्मद के, वो पामाल लाशा कासिम का है, वो देखो सीने पर जख्म देख रहे हो, ये कड़ियल जवान अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाशा है। और सारे के जितने भी लाशें थे हर लाशे की तशखीस करवाते रहे मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, यहां तक कि आका और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का बेसर का लाशा जख्मों से चूर चूर है, मेरे मौला का जिस्म नाजनी तन पर सर मौजूद नहीं है और हथेली के अंदर एक अंगुष्ट कम है, एक उंगली है कि जिसे काट लिया गया है, और यही वो अंगुष्ट मुबारक थी कि जिसे कता करके मलून ने मौला हुसैन की अंगूठी को चुराया था। हाँ अजीजो, यहां तक कि जब लाशों को दफना दिया है तो एक मर्तबा बनू असद के कबीले वाले जब जाना चाहते हैं तो मौला सैयद सज्जाद ने रोका कि कहा रुको, अभी एक लाशा है कि जिसे दफनाना बाकी है। और ये कहकर मेरा मौला सैयद साजिदीन फुरात की तरफ चले, मौला अब्बास अलैहि सलातो व सलाम का लाशा एक मर्तबा कब्र को तैयार किया, कब्र को तैयार करके मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलातो व सलाम ने अपने चचा को दफनाना चाहा, मगर है ये मजलूमियत आका सैयद सज्जाद, मजलूमियत सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम, आका जिस जगह से मौला के बदन मुबारक के जिस हिस्से को उठाकर दफनाने के लिए ले जाना चाहते हैं वो जगह जिसमें मुबारक से कता हो जाती है, अरे इतने तीर चले थे, इतने खंजर चले थे, तलवार से इतने वार हुए थे, अरे मेरा मौला अब्बास टुकड़ों में कट कर रह गया, अरे आका अब्बास अलैहि सलाम का लाशा टुकड़े टुकड़े कता कता हो चुका था, अरे अब्बास का लाशा नहीं लाश के टुकड़े दफनाए। परवरदिगार हमारी इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा, बारे इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मारिफत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ हम सबको नसीब फरमा, बारे इलाह शक की बीमारी से हम सबको नजात इनायत फरमा, महफूज फरमा, ऐ खुदा हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजनी को तसलियत व पुरसे का पैगाम हमारी जानिब से ईरसाल फरमा, बारी लहा इमाम की हजरत की जहूर में ताजील फरमा, हमें हजरत के आबान व अंसार में शुमार फरमा, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين